تمام برادران و خواهران کو دعا و مناجات کی اس نشست میں خوش آمدید. الحمدللہ خدا کے فضل و احسان سے ہم نے رمضان المبارک کی سحری کے ان اوقات میں دعا و مناجات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ دعائے ابو حمزہ سومالی جو کہ چوتھے امام علیہ السلام کی دعا ہے کہ جس کو ان کے صحابی حضرت ابو حمزہ سومالی نے نقل کی، بہت جلیل القدر دعا ہے. اور عموماً برادران اور آپ سے یہ گزارش پہلے بھی اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ دعاؤں کے اندر بالخصوص جو معصومین سے مروی دعائیں ہیں ان کے اندر توحید کے بارے میں، توحید کے مفہوم کے بارے میں، خود توحید کے بارے میں، توحید کی اقسام کے عنوان سے اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جن کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، تو وہ بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں. اور اگر ہم دعاؤں کے مطالب کی طرف غور کریں اور اس پر خصوصی توجہ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے مطالب ہیں کہ جن سے ہم اپنی عام زندگی میں نابلد ہوتے ہیں. اور دعاؤں کے ساتھ چونکہ واسطہ اور تعلق بھی نسبتاً صرف دعا پڑھنے کی طرف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ جس طرح مفہوم ساتھ ساتھ بیان کرتے ہوئے جو ہم ان دعاؤں کی تلاوت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام احباب اس عنوان کی طرف، اس موضوع کی طرف متوجہ رہیں گے. آغاز کرتے ہیں دعا ابو حمزہ سومالی کا تیسرا حصہ. دو حصے ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرا حصہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگارا مجھے، یعنی کل والا تھوڑا سا اس کے ساتھ جوڑ لوں، پروردگارا میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی تھی، میری بدبختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا، یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشاں ہوا. بس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا؟ کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا؟ اور اگر تو نے مجھے اپنی رسی مجھ سے کاٹ دی تو پھر میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ ہائے افسوس کہ تیری کتاب میں میرے ایسے ایسے اعمال درج ہو گئے ہیں کہ اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کا امیدوار نہ ہوتا اور نا امیدی سے تیری ممانعت کو نہ جانتا تو جب میں اپنے اعمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا. اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے اور میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی، قرشی، ہاشمی، عربی، تہامی، مکی، مدنی، رسول اللہ کے القاب بیان ہو رہے ہیں، مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں، یعنی خدا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. بس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مومن ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کا خون محفوظ رہے. تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا، लेकिन हम तुझ पर अपनी जुबानों और दिलों से ईमान लाए हैं ताकि तू हमें माफ कर दे। बस हमारी उम्मीद पूरी फरमा और अपनी आरजू हमारे सीनों में बसा दे और हमारे दिलों को टेढ़ा ना फरमा बाद इसके कि जब तूने हमें हिदायत दे दी है। अपनी तरफ से हम पर रहमत फरमा कि बेशक तू बहुत देने वाला है। बस कसम है तेरी इज्जत की कि अगर तू मुझे झिड़क दे तो भी मैं तेरी बारगाह से ना हटूंगा और तेरी तौसीफ करने से जुबान न रोकूंगा, क्योंकि मेरा दिल तेरे फजल करम और तेरी वसी रहमत की मारिफत से भरा हुआ है। तो गुलाम अपने मौला वाका के सिवा किसकी तरफ जा सकता है और मखलूक को अपने खालिक के अलावा कहाँ पर ना मिल सकती है। मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे जंजीरों में जकड़ दिया और देखती आंखों मुझसे अपना फेज रोक दिया और लोगों के सामने मेरी रुसवाइयां आयां कर दी और मेरे लिए जहन्नम का हुक्म सादिर कर दिया और तू मेरे और नेक लोगों के दरमियान हायल हो जाए तो भी मैं तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, तुझसे अफ़ दरगुजर की उम्मीद रखने से बाज नहीं आऊंगा और मेरे दिल से तेरी मोहब्बत खत्म नहीं होगी। मैं दुनिया में दी गई तेरी नेमतों और गुनाहों पर तेरी पर्दापोशी को हरगिज नहीं भूल सकता। मेरे आका, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे और मुझे अपनी मखलूक में सबसे बेहतर नबियों के खातम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम के कुर्ब में जगह इनायत फरमा और मुझे अपने हुजूर तौबा के मकाम की तरफ पलटा दे और मुझे खुद अपने आप पर रोने की तौफीक दे, क्योंकि मैंने अपनी उम्र टाल मटोल और झूठी आरजुओं में गवा दी है और अब मैं अपनी बहबूदी से मायूस हो जाने को हूं। तो मुझसे बुरा हाल और किसका होगा अगर मैं इसी हाल के साथ ही अपनी कब्र में उतार दिया जाऊं, जबकि मैंने कब्र के लिए कुछ सामान नहीं किया और नेक आमाल का बिस्तर नहीं बिछाया कि आराम पाऊं। तो ऐसे में गिरिया और जारी क्यों ना करूं कि मुझे नहीं मालूम मेरा अंजाम क्या होगा। मैं देखता हूं कि नफ्स मुझे धोखा देता है और हालात मुझे फरेब देते हैं और अब मौत ने मेरे सर पर अपने पर आन फैलाए हैं, तो कैसे गिरिया ना करूं। मैं जान के निकल जाने पर क्रिया करता हूं। कब्र की तारीकी और उसके पहलू की तंगी पर क्रिया करता हूं। मुनकर नकीर के सवालात के डर से क्रिया करता हूं। खासकर इसलिए क्रिया करता हूं कि मुझे कब्र से उठना है उरियानी और खारी के साथ, अपने गुनाहों का बार लिए हुए दाएं बाएं देखूंगा। जब दूसरे लोग ऐसे हाल में होंगे जो मेरे हाल से मुख्तलिफ होगा, उनमें से हर शख्स दूसरों से बेखबर अपने हाल में मगन होगा, उस रोज बाज चेहरे कुशादा खंदा और खुश होंगे और बाज चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द व गुबार और तंगी व जिल्लत का गलबा होगा। ये कुरान की आयात हैं, ये गालिबन सूरह अबस की ये आयात है। लिकुल इमरिम मिनहुम यौमा इज़िन शानुन युग्नी, कयामत की होलनाक और उस निशानियों में से एक निशानी क्या है, लिकुल इमरिम मिनहुम यौमा इज़िन शानुन युग्नी। हर फर्द दूसरे से बेनियाज होगा, हर एक को अपनी फिक्र लगी होगी, हत्ता सगे रिश्ते भी एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो नहीं हो पाएंगे। वो हशर की वहशत, वो कयामत का मरहला इस कदर सख्त होगा। बाज रोज उस दिन कुशादा होंगे, खंदा होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खुश होंगे, और बाज चेहरे ऐसे भी होंगे कि जिन पर गर्द व गुबार और तंगी और जिल्लत का गलबा होगा। मेरे सरदार, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी टेक है, तू ही मेरी उम्मीदगाह है, तुझी पर मुझे भरोसा है और तेरी रहमत से ताल्लुक है। तू जिसे चाहे रहमत से नवाजता है और जिसे तू पसंद करे उसको अपनी मेहरबानी की राह दिखाता है। बस हम्द तेरे ही लिए है कि तूने मेरे दिल को शिर्क से पाक किया। तेरे ही लिए हम्द है कि तूने मेरी जुबान को गोया किया। आया मैं इस कज जुबान से तेरा शुक्र अदा कर सकता हूं, या अमल में कोशिश करके तुझे राजी कर सकता हूं? ए मेरे परवरदिगार, तेरी हम्द के बराबर मेरी जुबान की क्या हैसियत, और तेरी नेमतों और एहसानों के सामने मेरे अमल का क्या वजन है? मेरे माबूद, तेरी सखावत ने मेरी आरजू को बढ़ाया और तेरी कदरदानी ने मेरे अमल को कबूल फरमाया है। मेरे सरदार, मेरी रغبत तेरी तरफ है और खौफ भी तुझी से है। मेरी मेरी उम्मीद तेरी जात से है और ये मुझे तेरे हुजूर खींच लाती है। ए खुदा ए यक्ता, मेरी हिम्मत तेरे हुजूर पहुंच के खत्म हो गई है और मेरी रغبत तेरे खजाने के गिर्द घूम रही है। मेरी उम्मीद और मेरा खौफ खास तेरे लिए है, मेरी मोहब्बत तेरे साथ लगी हुई है, मेरे हाथ ने तेरा दामन थाम रखा है, मेरे खौफ ने मुझे तेरी इताअत की तरफ बढ़ाया है। ए मेरे आका, मेरा दिल तेरे जिक्र से जिंदा है, तेरी याद से जिंदा है और तेरी मनाजात के जरिए मैंने अपना खौफ दूर किया। बस ए मेरे मौला और ए मेरी उम्मीदगा, ए मेरे सवाल की इंतहा, मुझे अपनी इताअत में लगाकर मुझे गुनाह से दूर कर दे। गुनाह से दूर होने का तरीका क्या है? अल्लाह की इताअत में लग जाए और तो गुनाह से दूर हो जाएगा, और मेरे गुनाह के दरमियान जुदाई डाल दे। बस मैं तुझसे अजली उम्मीद और बड़ी ख्वाहिश रखते हुए सवाल करता हूँ उस मेहरबानी और इनायत का जो तूने अपनी जात पर वाजिब की। बस हुक्म तेरा ही है और तू ही यकता है, तेरा कोई सानी नहीं है और सारी मखलूक तेरा कुंबा है जो तेरे इख्तियार में है, और हर चीज तेरे सामने झुकी हुई है। इसका मतलब ये जाहिरी जिस्मानी झुकना मुराद नहीं है, हर चीज तेरे सामने झुकी हुई है, यानी क्या, हर चीज तेरे सामने सर तस्लीम खम किए हुए है। तू बाबरकत है जहानों के पालने वाले, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम फरमा जब मेरे पास उज्र न रहे, तेरे हुजूर बोलने में मेरी जुबान गुंग हो जाए और तेरे सवाल पर मेरी अक्ल गुम हो जाए। बस मेरी सबसे बड़ी उम्मीदगा, मुझे इस वक्त नाउम्मीद ना कर जब मेरी हाजत सख्त हो, मुझे नादानी पर दूर न फरमा, मेरी कम सब्री पर महरूम न रख, मेरी हाजत के मुताबिक अता कर और मेरी कमजोरी पर रहम फरमा। मेरे सरदार, तू ही मेरा आसरा है, तुझी पर भरोसा है, तुझी से उम्मीद है। माफ कीजिएगा, तुझी पर तवक्कल और तेरी रहमत से ताल्लुक है, तेरी डेवड़ी पर डेरा डाले हुए हूँ, तेरी सखावत से अपनी हाजत बरारी चाहता हूँ। ऐ मेरे रब, तेरे करम से अपनी दुआ की इब्तिदा करता हूँ, तुझसे तंगी दूर करने की उम्मीद करता हूँ, तेरे खजानों से अपनी तंगी उसरत दूर करना चाहता हूँ, तेरे अफ के साये में आया खड़ा हूँ, मेरी निगाहें तेरी अता और सखावत की तरफ उठती हैं और हमेशा तेरे एहसान की तरफ नजर जमाए रखता हूं। बस मुझे जहन्नम में न जलाना कि तू मेरी उम्मीद का मरकज है, और मुझे हाविये दोजख में न ठहराना क्योंकि तू मेरी आंखों की ठंडक है। ए मेरे आका, तेरे एहसान और भलाई से मुझे जो गुमान है उसको ना झुटला क्योंकि तू ही मेरी जाए एतमाद है, और मुझे अपनी तरफ से सवाब से महरूम न फरमा, तू मेरी मोहताजी से वाकिफ है। मेरे अल्लाह, अगर मेरी मौत करीब आ गई है और मेरे अमल ने मुझे तेरे नजदीक नहीं किया तो मैं अपने गुनाहों के इकरार को तेरे हुजूर अपने गुनाहों का उज्र करार देता हूं। मेरे महबूब, अगर तू माफ कर दे तो तुझसे ज्यादा माफ करने वाला कौन है, और अगर तू अजाब दे तो कौन है जो फैसला करने में तुझसे ज्यादा आदिल हो। और इस दुनिया में मेरी बेकसी पर रहम फरमा, और मौत के वक्त मेरी तकलीफ पर, और कब्र में मेरी तन्हाई और पहलू कब्र में मेरी खौफजदगी पर रहम फरमा। जब मैं हिसाब के लिए उठाया जाऊं तो अपने हुजूर मेरे बयान को नरम फरमा, मेरे आमाल में से जो लोगों से मख्फी हैं उन पर माफी फरमा, मेरी जो पर्दा पोशी की है उसे दायमी कर दे, और इस वक्त रहम फरमा जब मेरे दोस्त बिस्तर पर मेरे पहलू बदल रहे होंगे। ये यानी मौत का जो मंजर है जो हर इंसान के लिए आना है, मौत की वो कैफियत, आगाज, उसके बाद ये सारे मराहिल जो यहाँ बयान हो रहे हैं, इमाम दुआया अंदाज में इनको बयान कर रहे हैं, ये मरहला हर एक की जिंदगी में आना है। बस जो तैयारी का काम है, जो अगले जहान को संवारने का काम है, वो इस मरहले से पहले होगा। देखिए, उस वक्त मुझ पर रहम फरमा जब मेरे दोस्त बिस्तर पर मेरे पहलू बदल रहे होंगे, उस वक्त रहम फरमा जब मेरे नेक हमसाए तख्ते गुसल पर मुझे इधर से उधर करते होंगे, उस वक्त मेहरबानी फरमा जब मेरे रिश्तेदार मेरा जनाजा चारों तरफ से उठाए हुए ले जाएंगे, और मुझ पर उस वक्त बख्शिश कर जब तेरे हुजूर आऊंगा और कब्र में तन्हा रहूंगा, और उस नए घर में मेरी बेकसी पर रहम को करम व करम फरमा, यहां तक कि तेरे सिवा किसी और से लगाव ना हो। ए मेरे आका, अगर तूने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मेरे सरदार, अगर तूने खता माफ नहीं की तो किससे मदद मांगू? अगर इस मुसीबत में मुझ पर तेरी इनायत न हो तो किससे फरियाद करूं, और अगर तू मेरी तंगी दूर ना करे तो किसे अपना हाल सुनाऊं? मेरे सरदार, अगर तू मुझ पर रहम ना करे तो फिर मेरा कौन है जो मुझ पर रहम करेगा? अगर उस जरूरत के दिन मुझ पर तेरा करम ना हो तो किससे इसकी उम्मीद रखूं? जब मेरा वक्त खत्म हो जाए तो गुनाहों से भाग कर किसके पास जाऊं? मेरे सरदार, मुझे अजाब देने में मेरे सरदार, मुझे अजाब न देना कि मैं उम्मीद लेकर आया हूं। मेरे अल्लाह मेरी उम्मीद पूरी फरमा और खौफ से अमान दे, बस गुनाहों की कसरत में तेरे अफ के सिवा मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मेरे आका, मैं तुझसे वो कुछ मांगता हूं जिसका मैं हकदार नहीं हूं, और तू ढांपने वाला और बख्शने वाला है, बस मुझे बख्श दे तो अपनी नजरे करम से मुझे ऐसा लिबास दे कि जो मेरी खताओं को छुपाने छुपाए छुपा ले, तो वो खता तू वो खताएं माफ कर दे कि उन पर बाज पुरस न हो। बेशक तू परवरदिगारा, तू कदीमी नेमत वाला, बड़ा दरगुजर करने वाला और मेहरबान माफी देने वाला है। मेरे अल्लाह, तू वो है जो सवाल न करने वालों और अपनी रुबूबियत के मुनकर लोगों को भी फैज और करम से नवाजता है। तो मेरे सरदार, क्यों कर वो महरूम रहेगा जो तुझसे मांगता है और यकीन रखता है कि पैदा करना और हुक्म देना खास तेरे लिए ही बाबरकत और बलंतर है। तो ए जहानों के पालने वाले, ए मेरे आका, तेरा बंदा हाजिर है जिसे उसकी तंगी ने तेरे दरवाजे पर ला खड़ा किया है। वो अपनी दुआ के जरिए तेरे एहसान का दरवाजा खटखटाता रहा है, खटखटा रहा है। बस अपनी इज्जत के वास्ते मुझे अपनी तवज्जो से महरूम न फरमा और मेरी अर्ज कबूल कर ले, और मेरी अर्ज कबूल कर ले। मैंने इस दुआ के जरिए तुझे पुकारा है और उम्मीद रखता हूं कि तू इस दुआ को रद्द नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मेहरबानी और रहमत की मारिफत है। मेरे माबूद, तू वो है जिसको साइल का इसरार जिसके जिससे साइल को इसरार नहीं करना पड़ता और अता करने से तुझ में कमी नहीं आती। तू ऐसा है जैसा तू बताता है और उससे बुलंद है जैसा हम कहते हैं। ए माबूद, मैं मांगता हूं तुझसे बेहतरीन सब्र, बेहतरीन सब्र, जल्द। ए माबूद, मैं मांगता हूं तुझसे बेहतरीन सब्र, जल्द तर कशाइश, सच बोलने की तौफीक और बेशतर सवाब की अदायगी। ए परवरदिगार, मैं तुझसे हर भलाई का सवाली हूं जिसे तू जानता है और मैं नहीं जानता। अल्लाह, मैं तुझसे वो चीज मांगता हूं जो तेरे नेक बंदे तुझसे मांगते हैं। ए बेहतरीन मसूल, यानी जिससे सवाल किया जाए, और अता करने वालों में बेहतरीन, मैं अपने लिए, अपने कुंबे के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद, ताल्लुकदारों, अपने भाइयों के लिए जो चाहता हूं अता फरमा। मेरी जिंदगी बेहतरीन, मेरी अच्छाई जाहिर और मेरे तमाम हालात को सुधार दे और मुझे उन लोगों में करार दे जिनकी तूने लंबी उम्र दी। उनके अमल को नेक गर्दाना, उनको अपनी बहुत सी नेमतें अता की और तू उनसे राजी हो गया और उनको पाकीजा बख्शिश में वो और उनको पाकीजा जिंदगी बख्शी जिसमें वो सदा खुश रहे, और उनको इज्जतदार बनाया और रोजगार को मुकम्मल फरमा। क्योंकि खुद तू जो चाहे करता है और जो तेरा गैर चाहे तो वो नहीं हो सकता। ए माबूद, मुझे अपने जिक्र के साथ खास फरमा और रात के वक्तों और दिन के गोशों में जिस अमल से तेरा तकर्रुब चाहता हूं उसमें मेरी तरफ से रिया और तारीफ की ख्वाहिश, खुद सताई और बड़ाई का एहसास ना आने दे और मुझे उनमें करार दे जो तुझसे डरते हैं। यहां आज इस दुआ का अगला हिस्सा, तीसरा हिस्सा भी यहां पर हम इख्तिताम करेंगे, एक हिस्सा भी दुआ का रहता है इंशाल्लाह, वो हम कल की नशिस्त में इस दुआ अबू हमजा सोमाली को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अगली दुआ की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ सलामती में जमान से इख्तिताम करते हैं। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رات 8 سے 9 بجے تک درس قرآن ہوتا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو شرکت کی دعوت ہے، اور یہ 4:15 سے 4:45 والا دعا کا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں، دوسروں کو دعوت بھی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو آفیشیل پیج ہے مولانا محمد نواز کے نام سے اور اسی نام کے ساتھ یوٹیوب میں چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں تاکہ تبلیغ دین کے اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.